सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिण्णये जिणेणमिं वेयणमहाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें अभी अपना वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार चल रहा है। भाव यानी यहाँ कर्मों के अनुभाग की बात चल रही है, वेदना यानी कर्म, कर्म को वेदना कहा है, और कर्म का भाव यानी कर्म के फल देने की शक्ति, जिसको हम अनुभाग कहते हैं, और जो अविभाग प्रतिच्छेदों में मापा जाता है। अभी हम पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए हैं। यहाँ जो महादंडक है 64, उसमें बताए हैं अलग अलग, जो तो उसमें जो कल हमने उत्कृष्ट शब्द पर चर्चा की थी ना, तो ये उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी ही महादंडक है, क्योंकि सबके उत्कृष्ट 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 लिए हैं। हाँ, उत्कृष्ट महादंडक यानी उत्कृष्ट अनुभाग संबंधी महादंडक, क्योंकि जघन्य वाले कहीं पर जघन्य को लिया ही नहीं है, हर एक का उत्कृष्ट उत्कृष्ट लिया है। सर्वतीव्र यानी सब जगह वो तीव्र अधिक से अधिक होता है, वो कहाँ होता है उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, परंतु वो उसका कारण भी बताए, वो अतिशय शुभ प्रकृति उसका अनुभव ज्यादा होता है। हमने नंबर दिए थे वहां से, और अभी हम 53 पृष्ठ पर आ गए हैं। 92 नंबर का सूत्र पढ़ा था और उसको 27 नंबर दिया था ना कल, अभी हम आगे देखते हैं। ये जो अलग अलग 27 हुआ ना, मान को 27 आ गया। लेफ्ट साइड में देखा 24 अप्रत्यक्ष अनावरण लोभ का कितना हुआ है, 1 कोई रह गया होगा, डबल हो गया। हाँ, अभी पढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ जो मूल प्रकृति तो कर्मों की 8 होती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह, और हर एक मूल प्रकृति के उत्तर भेद होते हैं, जिसको उत्तर प्रकृति कहते हैं। तो उसमें कौन से प्रकृतियों में अधिक अनुभाग है फल लेने की शक्ति, उसकी बात चल रही है, और उसमें अभी नंबरिंग बता रहे हो क्रम से। हम 93 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे ऊपर प्राकृत में। आभिनिभोय नानावर्णीयम परिभोगंतरायम च दोवी तुल्लाणी अनंत गुणहीनानी। उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय का अर्थ क्या है, मति ज्ञानावरणीय, और परिभोगांतराय, अंतराय कर्म का यह भेद है, परिभोग भोग परिभोग हम कहते हैं, उपभोग उसी को परिभोग कहा है। दोबारा तो ये दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणहीन है, ये 28 नंबर पर लिखा हमने, क्योंकि ये प्रकृति विशेष है। शंका, प्रकृति का महात्म्य किस प्रमाण से जाना जाता है, महात्म्य का अर्थ है उसमें अधिकता अनुभागों की, वो कैसे जानना जानता है। समाधान, उसका परिज्ञान सर्वघाती व देशघाती स्वरूप से होता है, यानी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग ज्यादा है और देशघातियों में कम है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, इसके पहले हमने 92 में किसकी बात की थी, 92 सूत्र में अप्रत्याख्यानावरण मान की बात की थी, तो यहाँ कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क सर्वघाती है। देखो सर्वघाती का अर्थ पूरा घात करता है, तो अप्रत्याख्यानावरण किसका घात करता है पूर्णतः? हाँ, देश संयम का, बरोबर है, यानी थोड़ा भी संयम नहीं होने देता। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, तो वहां प्रत्याख्यानावरण का उदय है वो तो सकल संयम नहीं होने देता, परंतु अप्रत्याख्यानावरण का उदय जो चौथे गुणस्थान वाले को है, तो उसका उसका उदय है, उसके उतने कषाय है, तो उसको थोड़ा भी संयम नहीं है, देश संयम उसको प्रकट नहीं होने देता। यह लिखा ना, क्योंकि वह पूर्णतया देश संयम का घात करता है। पूर्ण घात करे उसको कहेंगे सर्वघाती। ये तो निमित्त की भाषा है हो भाई, ये तो हमें पता है, सब रोज के सुनने वाले हैं ना, आप आज भी आए हो तो निमित्त बताया जाता है। कर्म जीव को कुछ नहीं करता, जीव स्वयं अपनी योग्यता से अपनी अपनी ज्ञान आदि की हीनता करता है, उस रूप परिणमित होता है, और उसी समय सामने कर्मों का निमित्त देखने में आता है, तब उसको कहते उसने सभी पूरा घात किया। भाषा भी वैसी होगी, परंतु समझने की जवाबदारी अपनी है, क्योंकि कर्णानियोग की पुस्तकों में निमित्त के आधार से, हाँ, प्रधानता से कथन होता है, परंतु कार्य तो अपने अपने में होता है। आप जो निमित्त उपादान की बात सीखेंगे, उसकी कैसे सुनना, आप ले गए थे ना, उसमें ये बात बहुत विस्तार से समझाई है। देखो फिर पढ़ते, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, चतुष्क यानी चार, क्रोध मान माया लोभ, सर्वघाती है, क्योंकि वह पूर्णतया देश संयम का घात करता है। देखो ये कोई कर्म नहीं घात करते, अपने जो अप्रत्याख्यान टाइप के कषाय है ना, अपने ही क्रोध मान माया लोभ, वे ही आत्मा में स्थिरता नहीं होने देते पांचवें गुणस्थान के योग्य। सम्यक तो हो सकता है उसके उदय में, परंतु देश संयम नहीं होता। देखो परंतु अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय देशघाती है, क्योंकि ये दोनों क्रमशः मतिज्ञान और परिभोगांतराय के एक देश का घात करने वाले हैं। परिभोग के चाहिए ना, नहीं वो तो कर्म का नाम है, अंतराय का घात नहीं होता है, परिभोग का घात होता है। देखो ऊपर परिभोगांतरायम च देशघाती, देशघाती क्यों है, मदिनान परिभोगाणम एक देशघाती तादो लिखा है ना। फिर से देखो क्या कहते हैं आप, पहले पृष्ठ पर देखना, प्राकृत अभिनिबोह्य नानावरणीय परिभोगांतरायम च, ये दोनों कर्मों के नाम है, ये देशघाती है, तो घात किसका करते हैं वो, पूर्ण घात नहीं करते, तो थोड़ा भी घात किसका करते हैं, मति ज्ञान का और परिभोग का, है ना। तो कहते हैं कि परिभोग के एक देश का घात करने वाले हैं, अंतराय जो लगा लिया है उसमें वो निकाल देना। क्या करेक्शन करना है, समझ में आया देवेंद्र भाई? नहीं आया, देखो पहले अभी आप हिंदी पढ़ो, प्राकृत छोड़ दो, हिंदी में पहली लाइन क्या लिखी है, हिंदी में 54 पृष्ठ निकालना। मयंक भाई आपको समझ में आया? हाँ, 54 पृष्ठ पर, हाँ, पहला शब्द क्या है, परिभोगांतराय के एक देश का घात करने वाले। अंतराय का कौन घात करेगा, परिभोग का घात होगा ना, तो उसको अंतराय के बदले परिभोग के एक देश का घात करने वाले, ऐसा करना उसको। और उसका प्रूफ ऊपर ही पहली लाइन में है, बीच में मदिनान परिभोगाणम एक देश घातित तांदो। इस कारण इन दोनों कर्मों का अनुभाग अप्रत्याख्यानावरण मान के अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणाहीन है, यह सिद्ध होता है। देखो अभी ये तो अप्रशस्त कर्मों में घटाना घटा रहे ना, तो उसमें सर्वघाती जो है वो ज्यादा अप्रशस्त है और ये कम अप्रशस्त है, इस तरह से लेना। अनुभाग अनंत गुणाहीन का अर्थ होता है अनंत वा भाग है। हम 54 पृष्ठ पर आ गए हैं। पहला शब्द परिभोगांतराय के लिखा है, उसको परिभोग के करना। अब 94 नंबर का हम सूत्र पढ़ते हैं। चक्षु दंशनावरणीयम अनंत गुणहीनम, उनसे चक्षु दर्शनावरणीय प्रकृति अनंत गुणहीन है। क्या हुआ? हाँ, नंबर डालना है ना, तो 29 डालने। इसका कारण प्रकृति विशेष है। विशिष्ट प्रकृति में अपनी अपनी खासियत है, उतना उसमें अनुभाग पाया जाता है। शंका, उन दोनों की अपेक्षा इसकी शक्ति हीन है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्यों नहीं जाना जाता? अवश्य जाना जाता है, क्योंकि अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय के समान चक्षु दर्शनावरणीय का सर्वत्र क्षोभशम नहीं पाया जाता है। सर्वत्र क्षोभशम नहीं पाया जाता। चक्षु दर्शनावरणीय का कार्य क्या है? किसको आवरण करता है? कौन से? अरे दर्शनावरण की बात, कौन सा दर्शन? चक्षु संबंधी, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो कुछ जानना है उसके पूर्व में होने वाला सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन को रोकने वाला वो चक्षु दर्शनावरण है। तो चक्षु दर्शनावरण का क्षोभशम, देखो जैसे अन्य देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। मति ज्ञान में क्या पोजीशन है? ऐसा कोई जीव नहीं है कि जिसका मति ज्ञान बिल्कुल खुला नहीं है, उसका अर्थ है सर्वघाती का तो उसका दबे रहेंगे, देशघाती का उदय रहेगा। चक्षु ये मति ज्ञान में हमने घटित किया। चक्षु दर्शन की क्या पोजीशन है? जिसको जिसको चक्षु इंद्रिय है हाँ, और उसका जानना चलता है, उसमें चक्षु दर्शनावरण भी है, तो वहां उसका क्षोभशम चलेगा और अन्य जीवों में नहीं होगा क्षोभशम। तो उस नहीं नहीं देखो ये आपका ही प्रश्न शंकाकार पूछेगा आचार्यों को पता है कि आपके प्रश्न उनके। देखो शंका, चूंकि चक्षु दर्शनावरण का थोड़े ही जीवों में क्षोभशम होता है, इसके सिवा अनंत जीव राशि में, कितने अनंत? अभी ये पूरे एकेंद्रीय अनंत आ गए ना सारे, उसमें निगोद वगैरह एकेंद्रीय, तो एकेंद्रीय दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय जीवों का चक्षु दर्शन नहीं होते, क्योंकि चक्षु इंद्रिय वालों को ही वो होगा। तो चक्षु इंद्रिय वाले कौन कौन है? चतुर इंद्रिय है और संगी असंगी पंचेंद्रिय है। तो कहते हैं कि अनंत जीव राशि में वह पूर्ण रूप से चक्षु इंद्रिय का घातक है। चक्षु इंद्रिय का क्यों कहा? चक्षु दर्शन का चाहिए। सौवम चक्षिंद्रियम घाई दूण, ठीक है। अतः हाँ, उसकी शक्ति ही नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा मानने में विरोध है। आपका यही से प्रश्न था, वो तो ये तो स्ट्रांग हुआ। हाँ, समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय, चूंकि स्पर्शनादि 5 इंद्रिय और 9 इंद्रिय से संबंध रखने वाले सब ज्ञान का घातक है। क्या कहते हैं? 9 इंद्रिय किसको कहते हैं मालूम है? प्रेरणाबेन, मन को कहते हैं 9 इंद्रिय। जैसे हम कषाय 9 कषाय कहते हैं, वो नहीं संबंध लगाना, परंतु जो इंद्रिय और 9 इंद्रिय यानी मन, तो अभिनिबोधि ज्ञान मति ज्ञान मती ज्ञान कहते किसको है, हमें डेफिनेशन पांच इंद्रिय और मन के द्वारा जो जानने का कार्य होता है उस ज्ञान को मती ज्ञान कहते हैं, और उस ज्ञान को आवृत करने वालों को हम कहेंगे मती ज्ञानावरण। तो मती ज्ञानावरण कौन कौन से ज्ञानों के आवरण करता है, कौन कौन से ज्ञान का घात करता है, पांच इंद्रिया और मन, बराबर। फिर इसको पढ़ते अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, चूंकि स्पर्शनादि पांच इंद्रिय और नौ इंद्रिय से संबंध रखने वाले यानी इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले सब ज्ञान का घातक है, परंतु चक्षु दर्शनावरणीय केवल चक्षु दर्शनोपयोग मात्र का घातक है। समझ में आपका प्रश्न? इसलिए देखो मति ज्ञानावरण तो पांचों इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान को आवृत करने वाला है, तो उसकी शक्ति ज्यादा है, और चक्षु दर्शनावरण एकमात्र चक्षु दर्शन संबंधी उस कार्य का प्रतिपक्षी है, कितने जीवों में है उसकी अपेक्षा नहीं लिया उसको। अतः अल्प कार्य करने के कारण चक्षु दर्शनावरणीय की शक्ति स्तोक है, स्तोक यानी अल्प है, कम है, यह जाना जाता है। ये बात ख्याल में आई? अब 95 नंबर का प्रश्न अभी यहां पढ़ेगी अमी, फिर 30 नंबर भी दे देंगे। सुदनानावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम भोगंतरायणम राय च रायम चाहिए तिन्नी तुल्लानी अनंत गुणहीनानी भोगंतरायम च चाहिए। पहले भी आया था ना परिभोगंतरायम, वैसे भोगांतर भोगंतरायम य के ऊपर बिंदी लगाना, तिन्नी भी तुल्लानी अनंत गुणहीनानी, इसका अर्थ देखते ही नीचे देखो 30 नंबर डालना यहाँ। श्रुत ज्ञानावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर चक्षु दर्शनावरणीय से अनंत गुणहीन है। हमने पहले गाथा देखी थी, उसमें तीन त्रिक लिखा था, तीन ग्रुप, तीन तीन के ग्रुप, ऐसे तीन ग्रुप देखे थे, तीन का एक ग्रुप, ऐसे तीन ग्रुप, उसमें से पहले वाला लिया है। देखो वो गाथा निकालना, देख 40 पृष्ठ पर थी, अभी हमने इतने क्रम से हम देखते आए हैं ना। देखो सादम यानी सातावेदनीय, जसुच्च यानी यश कीर्ति और उच्च गोत्र, दे यानी देवगति, कम यानी कारमान शरीर, फिर ते यानी तेजस शरीर, आ यानी आहारक शरीर, वे यानी वैक्रिक शरीर, मिला है ना आपको गाथा में पढ़ रहे। मनु यानी मनुष्य गति, ये अनंत गुणहीन देखे थे। फिर ओम उच्च ओ यानी औदारिक शरीर, मिच्छ यानी मिथ्यात्व, के ने केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण लिया उसमें, असाता वेदनीय, वीर ने वीर्यांतराय, अनंतानु ने अनंतानुबंधी चतुष्क और संजलन चतुष्क। उसके बाद हमने दूसरी गाथा देखी, देखो अठा अभिनी, अठ में कौन कौन लिए, आठ में कौन लिए, पहले किसको लिया, प्रत्याख्यानावरण, फिर अप्रत्याख्यानावरण, और जहां से अभी हमने शुरू किया था अभिनिबोधिक और परिभोगांतराय, वो अब देखा ना आज चक्षुए ने चक्षु दर्शनावरण। अब तिन्नीतीय की बात चलेगी यहाँ, तिन्नीतीय में से वो पहला लिया है, पहला ग्रुप जो है श्रुत ज्ञानावरणीय और चक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय। अचक्षु दर्शनावरणीय, हाँ हाँ, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों के संबंध में। देखो श्रुत ज्ञानावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य ने समान होकर चक्षु दर्शनावरणीय से अनंत गुणहीन है। अब ये आपके प्रश्न पूछेंगे वो, फिर शंका, वो श के ऊपर बिंदी जरा स्पष्ट नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण का विषय महान है, बड़ा है ना श्रुत ज्ञानावरण का विषय, क्योंकि वह परोक्ष स्वरूप से सब पदार्थों को जानने वाले श्रुत ज्ञान के घातने में प्रवृत्त है। मति ज्ञान का विषय कितना है, पांच इंद्रिया मन संबंधी, तो पांच इंद्रियों के तो जो सामने है उसी को जानेगी, पांच इंद्रियां अकेले पुद्गल को जानेगी। श्रुतक ज्ञान सभी पदार्थों को, जितना केवल ज्ञान जानता है उतना श्रुतक ज्ञान परोक्ष रीति से जानता है। केवल ज्ञान इतना जानता है, भेद क्या है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है और ये परोक्ष जानता है। तो कहते परोक्ष स्वरूप से कितने पदार्थों को, सब पदार्थों को जानने वाले श्रुतक ज्ञान के गातने में प्रवृत्त है। यानी अब ये शंकाकार क्या पूछता है वो तो ख्याल में आ गया होगा आपका। शेष दो प्रकृतियों का अनुभाग भी महान ही है क्योंकि वह श्रुतक ज्ञान आवरण के अनुभाग के ही समान है। एक काहे से उन्होंने कंक्लूजन क्यों निकाला, तीनों समान है। श्रुतक ज्ञान आवरण का वो महात्म्य बता रहे तो समान है, इसलिए उसमें भी उतना ही अनुभाग होना चाहिए। इस कारण इनका अनुभाग चक्षु दर्शनावरणीय के अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा होना चाहिए, क्योंकि महान विषय वाली प्रकृति का अनुभाग महान होता है और अल्प विषय वाली प्रकृति का अनुभाग अल्प होता है। ये शंका ख्याल में आई, अभी उसका समाधान। यदि ऐसा है तो इस अर्थ को छोड़कर ऐसा ग्रहण करना चाहिए यथा, यानी किस प्रकार समझना है उसको अभी बताएंगे। क्षपक श्रेणी में अब ये कंक्लूजन क्यों निकालते हैं उसकी बात अभी बता दें। क्षपक श्रेणी में देशघाती बंधकरण के समय, ये क्या होता है देशघाती बंधकरण, नाम सुना है कभी? हाँ, वे अलग अलग करण परिणाम हमने देखे थे, वहां सात अलग अलग करण होते थे क्षपक श्रेणी में। तो उसमें क्या होता था, देशघाती करण, ऐसा एक करण वहां होता है, ऐसा एक कोई प्रोसेस होता है क्षपक श्रेणी में, उसका नाम है देशघातीकरण। उसी का नाम लिखा है देशघाती बंधकरण, यानी वहां सर्वघाती का बंध नहीं होगा, सर्वघाती स्पर्धक नहीं बंधेंगे। जो देशघाती भी प्रकृतियां बंधेगी तो उसको कहते हैं सर्वघाती से, वो देशघाती बंधकरण कहते उसको। उसके समय जिसका अनुभाग बंध पहले ही देशघाती हो गया है उसका अनुभाग स्तोक होता है। ऐसे कौन सी प्रकृतियां हैं जिनका अनुभाग पहले ही देशघाती हो गया है, तो कहते हैं मोहनीय का। मोहनीय जब भी संयता संयत में आता है तभी उसका देशघाती हो जाता है, तो उसका तो अनुभाग और हीन हो जाएगा। और अभी मैंने अभी निकाल के पढ़ा नहीं है, मगर जो पहले का याद है क्षपणासार में ये बात अपनी आई थी तो उसके आधार से मैं बता रही हूं। और जिसका अनुभाग बंध पीछे देशघाती होता है उसका अनुभाग बहुत होता है। उसमें भी ये देशघाती करण में ये मोहनी को तो छोड़ दिया उन्होंने, अन्य जो प्रकृतियां हैं उनमें पहले कौन सी देशघाती होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है, उसका नंबर दिया है। ये आप पुस्तक निकालना, तीसरा भाग लब्धिसार, न्यूज़पेपर का कवर वाला होगा, देखो यू लिखा है पीछे, हाँ पीछे के बाजू में। तो ये देशघातीकरण क्या होता है पता चलेगा ना अपने को। ये सारा नवे गुणस्थान में ही आया था ना, प्रस्तावने में भी देख, आप जरा देखना दूसरी पुस्तक लेके। तीन सौ तीस देखो देशघाती करण कहिए है आपके, हाँ 330 पृष्ठ है। ये भी कहाँ होता है क्या होता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले तो ये जो 16 प्रकृतियों का क्षय वगैरह वो बात आती है ना, उसके बाद की बात है। हाँ वहीं पर है। देखो देशघातीकरण कहिए है, ये देशघाती का स्वरूप बताते हैं। देशघातीकरण का टीका में देखते मन पर्याय आदि 12 प्रकृति निका, 12 प्रकृतियां यहां बताई गई हो। पूर्वे सर्वघाती द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता था, सर्वघाती का द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता। यहां तय पर यानी इससे आगे देशघाती, देखो सर्वघाती का देशघाती दारू लता रूप द्विस्थानगत अनुभाग बंद होने लगा, सो देशघाती करण है। पहले सर्वघाती का होता था शैल और अस्थि रूप, अभी उसका सर्वघाती रूप से बंद नहीं होगा। परिणाम इतने विशुद्ध है कि लता और दारू वाले दो ही अनुभाग बंद होगा, यहां पर द्विस्थानगत कहते हैं। अभी उसमें अभी आगे चलेंगे, उसी को देशघाती करण कहा है। तो उसका जो उसमें क्रम बताते हैं, देखो नीचे के 16 प्रकृति संक्रमण तय परे, यानी 16 प्रकृतियों का क्षय होने के बाद संक्रमण के द्वारा क्षय होता है। संख्यात हजार स्थितिकांड भय उसके होने के बाद मन पर्याय ज्ञानावरण और दानांतराय का, ये दोनों एक साथ लिया। फिर उसके बाद अनेक स्थिति कांडक बीच बीच में गए, मैं खाली ग्रुप बताऊंगी। अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण, लाभांतराय का, फिर उसका देशघाती हो जाएगा। उसके बाद चक्षु ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण, भोगांतराय का, तीनों को एक साथ लिया है देशघातीकरण में। उसके बाद चक्षु दर्शनावरण का, हम उल्टे क्रम से जा रहे हैं ना अभी, इनका बाद में देशघातीकरण होता है तो उसमें अनुभव ज्यादा है। और उसके बाद मति ज्ञानावरण, उपभोगांतराय, उसके बाद वीर्यांतराय का, उसके बाद पुरुषवेद संज्वलन कषाय का, वगैरह वगैरह। यानी ये देशघातीकरण जो है तो उसमें जो सर्वघाती, पहले तो सर्वघाती देशघाती स्पर्धक दोनों होते हैं ना, ये जो कौन सी प्रकृतियां ये देशघाती प्रकृतियां, उनमें स्पर्धक दो टाइप के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। तो पहले तो सभी स्पर्धक बनते थे, अभी सर्वघाती स्पर्धक नहीं बनेंगे, अकेले देशघाती का ही बंद होगा। तो वहां जो कम अनुभाग वाले हैं उनका देशघातीकरण पहले हो जाएगा। अभी हम उल्टे क्रम से देख रहे हैं, पहले हमने चक्षु दर्शनावरण को लिया था, इस तरह से उल्टे क्रम से जा रहे हैं ना, अनंत गुणा हीन 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 वाले बता रहे, अब उसका कारण यहां बताएंगे। देखो ये अभी हमने कौन सा लिया था, लब्धिसार, पेज नंबर 330। है हाँ, आपको जाके देखना है ना, तो 330 ये समय ज्ञान चंद्रिका वाला लब्धिसार। अब देखते हैं इसको, फिर पढ़ते हैं। यथा क्षपक श्रेणी में देशघाती बंदकरण के समय जिसका अनुभाग पहले ही देशघाती हो गया है उसका अनुभाग स्तोक होता है, ये अभी ख्याल में आए ना, उसमें अभी हमने जो नंबरिंग किया था। तो जिनका अनुभाग स्टार्टिंग में जल्दी देशघाती वाला हुआ वो कम अनुभाग वाले हैं। हाँ, अनुभाग बंद, और जिसका अनुभाग बंद पीछे देशघाती होता है उसका अनुभाग बहुत होता है, ये ख्याल में है ना, अभी हमने जो लिस्ट वहां देखी थी। इस नियम के अनुसार इन तीन प्रकृतियों का अनुभाग बंद चक्षु दर्शनावरणीय के अनुभाग बंद से पहले ही देशघाती हो जाता है। यथा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग तक इनका अनुभाग बंद सर्वघाती बंधता है। फिर वहां मनपरे ज्ञानावरण और दानांतराय को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। बंदे की अपेक्षा की बात चल रही है। इससे आगे अंतर्मूर्त जाकर अभी जो हमने पढ़ा था उसकी बात चल रही है। अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय इन तीनों प्रकृतियों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। ये हमने देखा था, देशघाती करता है, द्विस्थान रूप करता है, लता और दारू रूप। इससे आगे अंतर्मूर्त जाकर अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, ये पढ़ा था ना, हाँ, ये तीनों को इकट्ठा। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर श्रुत ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय इन तीनों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर चक्षु दर्शनावरणीय को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर अभिनिबोधि ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय इन दोनों प्रकृतियों को बंध की अपेक्षा देशघाती रूप करता है। पश्चात अंतर्मूर्त जाकर वीर्यांतराय को बंध की अपेक्षा देशघाती करता है। अभी हमने जो लिस्ट देखी है उसमें उल्टे क्रम से देख ले, इसके बाद वाले भी आपको ख्याल में आया होगा, वो आगे आएगी बात। इस कारण चक्षु दर्शनावरणीय का अनुभाग इन तीन प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा है। इस अर्थ की 12 देशघाती बंध प्रकृति के संबंध में सर्वत्र योजना करना चाहिए। अभी जो प्रकृतियां बता रहे हैं, क्यों बता दिए हैं, उसमें यही कारण बताएंगे। अब तो चक्षु दर्शनावरणीय से ये तीन क्यों है वो बताएं, अभी इन तीनों से आगे के तीन क्यों है वो बताएंगे। कारण तो यही आगे भी समझ लेना है। इकतीस हो गए थे ना अपने, अभी 31 नंबर पर आएंगे हम, 31वां बताएंगे, 96 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। ओहि नाणावरणीयम, ओहि दंशनावरणीयम, लाहंतरायम च तिन्निवि तुल्लानि अनंत गुणहीनानि। उनसे अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय ये तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हीन है। देशघातीकरण में ये पहले देशघाती हो जाते हैं और इसलिए उसका अनुभाग अनंत गुणा हीन है, ये सिद्ध हो जाता है। इसका कारण पहले बतलाए हैं इसलिए यहां उसका कथन नहीं करते हैं। 97 नंबर, मणपज्जव नाणावरणीयम, थीन गिद्धि दानंतरायम च तिन्निवि तुल्लानि अनंत गुणहीनानि। अभी 32 नंबर है इसका, उनसे मनपर्यय ज्ञानावरणीय, न के आगे वो विसर्ग बराबर देना, मनपर्यय ज्ञानावरणीय, स्त्यान गृद्धि और दानांतराय ये तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। ये निद्रा जो है ना, पांच निद्राएं हैं, ध्यान वृद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला निद्रा प्रचला, उसमें ये पहला अत्यंत यानी बहुत तीव्र निद्रा है, उस संबंधी का ये कर्म है। ये तीनों ही तुल्य और अनंत गुणहीन है, इसका कारण सुगम है। जो अभी हमने ऊपर देखा था, तीन तीन के तीन है यहाँ पर ग्रुप्स। नौंसे वे ये दो अनंत गुणहीनों, उनसे नपुंसक वेद प्रकृति अनंत गुणी हीन है, क्योंकि वह नौ कषाय है। कषायों को कहां छोड़ के आए ना हम, पहले कौन से कषाय लिए तीव्रता में, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी में कौन सा क्रम था क्रोधमान मायलोभ में, पहले लोभ माया क्रोध और मान, अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन, उसके बाद प्रत्याख्यान आवरण, उसके बाद अप्रत्याख्यान, और अभी ये नौ कषायों का नंबर आया। बीच में बहुत सारी प्रकृति आ गई सेन, क्योंकि वह नौ कषाय अभी 99 नंबर पर। अरति अनंत गुणहीना, उससे अरति अनंत गुणीहीन है, 34वें नंबर पर, क्योंकि इनमें प्रकृतिगत विशेषता है, यथा नपुसक वेद का उदय ईंटों के पाक के समान है। ये ईंटों का पाक क्या समझ में आता है? ईंटे बनाते हैं ना कुम्हार, तो ये तो उसको भट्टी में डालकर ऐसा पकाते हैं, या ऐसा भी ईंट का सेक देते हैं बीमारी में, बताए वो तो गर्म होता है। कोई भी ईंट को गर्म करे तो रख देंगे तो ईंट को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। ये नपुसक वेद वाले परिणाम ऐसे है, तो ये जो उनमें वासना इच्छा उत्पन्न होती है तो बहुत काल तक रहती है, इसलिए उसका अनुभव ज्यादा है बताने के लिए। परंतु अरति तो मात्र नहीं रमने रूप भाव को उत्पन्न करने वाली है, इस कारण वह नपुसक वेद की अपेक्षा अनंत गुणीहीन है। अब आगे 35 नंबर पर 100 नंबर का सूत्र, सोगो अनंत गुणहीनो, उससे शोक अनंत गुणाहीन है। देखो शोक से अरति पावरफुल है इसका, नफरत होती है ना किसी के प्रति, अरे हाँ, तो शोक अनंत गुणाहीन है क्योंकि वह अरति पूर्वक होता है। शंका, वह अरति पूर्वक कैसे होता है? समाधान, क्योंकि अरति के बिना शोक नहीं उत्पन्न होता। छत्तीस नंबर पर पढ़ेंगे 101 नंबर का सूत्र, भयम अनंत गुणहीनम, उससे भय अनंत गुणाहीन है, क्योंकि भय के उदय काल की अपेक्षा शोक का उदय काल बहुत पाया जाता है। ओहो, देखो हर जगह अलग अलग अपेक्षाओं से बताते हैं। शंका, भय प्रकृति निरंतर बनती है, भय और जुगुप्सा निरंतर बनती है ना, उदय कभी कभी नहीं होता। यहाँ अनुभव की अपेक्षा बात चल रही, देखो बताते, चूंकि शोक उत्कृष्ट से 6 मास पर्यंत ही होता है। वाह वाह, ये रामचंद्र की कहानी याद आ गई ना। हम पढ़ते ना, लक्ष्मण का शव लेकर इतना शोक किया उसने 6 महीना। चूंकि शोक उत्कृष्ट से 6 मास पर्यंत ही होता है, वो उत्कृष्ट से बराबर करना, परंतु भय का काल नारकियों में 33 सागरोपम प्रमाण, अरे ये तो शंका है, 33 सागरोपम प्रमाण रहते हुए शोक की अपेक्षा भय अनंत गुणा क्यों नहीं होता? ये तो इसका जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है। हाँ, समाधान, नहीं, क्योंकि नारकियों में भी भय का काल अंतर्मूर्त मात्र ही उपलब्ध होता है उसका, ये तो चेंज होते हैं ना, परिणाम चेंज होते हैं, उसका उदय जो है भय है, अलग अलग जुगुप्सा है, या कभी कभी भय नहीं भी होता है। हमने देखा था 4 पॉसिबिलिटीज होती है, भय का उदय है, या जुगुप्सा का उदय है, या दोनों का उदय है, या दोनों का ही उदय नहीं, ये 4 पॉसिबिलिटीज होती है हर एक जीव के लिए, वैसे वहां समझना, इसलिए वो अंतर्मूर्त की बात की। मेरे शोक में तो लगातार लिया 6 महीना, ठीक। हाँ, अब 102 नंबर का सूत्र, दुगुंचा अनंत गुणहीना, उससे जुगुप्सा अनंत गुणहीन है। इसका कारण प्रकृति विशेष है, निद्दा निद्दा अनंत गुणहीना, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणहीन है, क्योंकि ये नंबर कितना दिया, 38 दिया ना, हाँ 38, हाँ, क्योंकि किसी भी जीव के कहीं पर ही उसका उदय देखा जाता है, यानी किसी भी का किसी ही, क्या लिखा है मैंने पढ़ा, कहीं पर ही कहीं में उदय दंसनाद कस्य भी जीवस्य न नेरे से भी भय कालस्य, नारकियों में भी वो भी बराबर है, यानी कहीं पर ही उदय होता है, हर समय उसका उदय नहीं, ये बात बताना चाहते, उसके बाद निद्दा निद्दा के बाद पयला पयला अनंत गुणहीना, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणहीन है, क्योंकि अभी प्रचला प्रचला में वगैरह क्या देखते हैं, लार बहने के थोड़े काल से संबंध रखने वाला चैतन्य का अभाव देखा जाता है, परंतु निद्रा निद्रा के उदय से उसकी उपलब्धि नहीं होती। ये निद्रा निद्रा ज्यादा गाढ़ी है, प्रचला प्रचला उससे तरल है। निद्रा अनंत गुणहीना, उससे निद्रा अनंत गुणहीन है। हम हमेशा निद्रा को पहले लेते हैं, परंतु प्रचला को लेना, प्रचला फिर निद्रा फिर प्रचला प्रचला फिर निद्रा निद्रा। निद्रा अनंत गुणहीन है, 40 नंबर हो गए यहाँ पर। क्योंकि इसके उदय से सचेतन के समान निद्रा उपलब्ध होती है। सचेतन के समान निद्रा यानी वो तो जागते हुए जैसे लगता है ना, हाँ, या ऐसे ऐसे हल्की नींद है कि वो तो पता भी चलता है बाहर क्या हो रहा है। हम भी देखें कभी कभी गाढ़ निद्रा आती है और कभी कभी ऐसे लाइट होती है तो पता कुछ चलता है कुछ थोड़ी बातें। पहला अनंत गुणहीना, उससे प्रचला अनंत गुणहीन है। 41 नंबर देना यहाँ पर। हाँ, प्रचला कम, हम हमेशा निद्रा प्रचला ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, मगर प्रचला पहले लेना पड़ेगा, फिर निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा निद्रा, और बाद में स्थान वृद्धि। इस ध्यान वृद्धि में तो नींद में उठकर कुछ कार्य भी कर आए तो भी पता नहीं लगे उसको इस तरह से। ये तो बचपन में वो वीर धवला नाम की कहानी यानी कादंबरी बड़ी नॉवेल पढ़ते थे, उसमें वो नींद में जाता था कुछ कुछ करके आता था। ये ध्यान वृद्धि वो तो कहानी थी मगर। क्योंकि इसके उदय से बोलते हुए बैठे हुए अथवा चलते हुए जीव के सिर का संचार बहुत स्तोक देखा जाता है, यानी ये चलते हुए भी उसको ऐसी नींद नींद का कुछ अनंत गुणी ही नहीं, ऐसी कुछ निद्रा है वहां पर भी। देखो निद्रा और प्रचला का उदय हमने कल देखा था, 12वें गुणस्थान के उपांत समय तक है। अभी मुनियों को भी श्रेणी अवस्था में हो या शुद्धोपयोग में, जिसको हम शुद्धोपयोग द्रव्यानुयोग वाले कहते हैं, श्रेणी का भी है, सातवां गुणस्थान का भी है, वहां निद्रा प्रचला वाला भी वहां हो सकता है, परंतु उसका उदय कितना अनंत गुणाहीन है, और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अशुभ प्रकृति और अनंत गुणाहीन होती चली जाती है, नहीं के बराबर है। हम जैसे सोते वैसी बात नहीं है। 106 हो गए अभी। क्या क्या वो तो वो अलग अलग है ना, क्यों नहीं चलेगा, वो चल सकता है, कोई भी चल सकता है। तो नींद यानी सुख का वेदन आप जानना चाहते हैं, यानी नींद के साथ साता वेदन है क्योंकि वहां सुख की अनुभूति है, ऐसा नहीं है। वहां तो ज्ञान की मंदता हो रही है इतनी अपनी। ऐसा नहीं है, दर्शनावरण मंद होगा तो नींद नहीं आएगी। वो एक कर्म का दूसरे कर्म के वो आपस में कोई हेराफेरी नहीं करते, अपना अपना कार्य करते। हमारे जैसे नहीं है, हम दूसरों को मदद करते ना बहुत। परोपकाराय सताम विभूतया, तो हम सज्जन बनना चाहते हैं, क्यों, परोपकार करना चाहते हैं, यानी मानते हैं कि हम दूसरे का कार्य कर सकते हैं, तो महान मिथ्यात्व है। तो इसको हमने इतना ऐसा चमक दमक कर दिया ना, हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, परंतु ग्लोरीफाई कर दिया, परंतु मूल में हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही नहीं सकता है। अभी जो व्यवहार भाषा में निमित्त के कथन में हमने इसकी मदद की, ये बात अलग है, परंतु मूल में उपादान से कार्य होता है ये अगर पता नहीं है तो ये फिर ये घोटाले चलते रहेंगे। ये अपना अपना कार्य करेगा, कर्म दूसरे का नहीं करेगा। हाँ, आप कहते हमको नींद नहीं आती तो दूसरा दिन बिगड़ जाता है, तो बिगड़ जाता है, या हम मानते हैं ना तो तबीयत नहीं बराबर, ये तो आशा था वेदनी में चले ये हम आपको नहीं आती, नहीं नींद आए तो दूसरा दिन खराब लगता है ना। और मुनियों को कितनी नींद लगती, और ये मेरिट वाले स्टूडेंट आते हैं ना, 10वीं 12वीं की परीक्षा में जाते, कितना सोते, कोई कोई बच्चे पूरी रात जागते और जाके पूरा पेपर लिखते 3 घंटे का, और बिल्कुल उनको नंबर्स मिलाना है, तो कितनी जागृत अवस्था होगी ना उनकी। क्या वहां भी अच्छा नहीं लगता, चलो जाने दो आज का पेपर कैंसिल, ऐसा तो नहीं होता है वहां, तो उल्टा अंदर से जोर आता है। तो नींद नहीं आती तो मैं तो सबसे सबसे अच्छा है, ये मुमुक्षुओं के लिए सबसे बढ़िया बात है। अरे इतना चिंतन हो जाता है, सब याद करो ना जो तत्व हम पढ़ते हैं। अरे दिन भर तो नहीं टाइम मिलता है, बहुत काम करते हैं ना तो रात में करो तत्व चिंतन। ये हम सारा उल्टा ही मानते हैं ना, जिसको जिसको ये कर्मों के जो अप्रशस्त कर्मों के उदय में जो होता है उसको हमने सुख मान लिया है, निद्रा नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, ये सारे असाता वेदनी के तीव्र उदय में क्षुधा तृषा आदि लगते हैं, वो नहीं लगे तो पहले डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। आहार कम हुआ और निहार भी कम हुआ या ज्यादा भी हुआ तो पहले डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। ये अपनी मान्यता को जरा टटोलना, केवल ज्ञान होने पर ना ही बढ़े नख केश, तो हम तो नख और केश बढ़ा बढ़ा के अपनों को सौंदर्य मान मानते क्योंकि शरीर मैं हूँ ये मूल में भूल है अपनी। ये अपना सौंदर्य तो अपने में होगा कि परद्रव्य में होगा, ख्याल है। देखो अभी अयश कीर्ति, हाँ 107 नंबर, अ जैसे कित्ती नीचा गोदम च दोवी तुल्लाणी अनंत गुणहीनाणी, 42 नंबर डालना यहाँ पर। उससे अयश कीर्ति और नीच गोत्र ये दोनों प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणहीन है। अयश और नीच गोत्र में जितना उत्कृष्ट अनुभाग है उसके आधार से नंबरिंग चल रहा है। यश कीर्ति और उच्च गोत्र को कहा कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिया था वही देख रहे थे ना, पहले साता वेदने के बाद उसका नंबर आया था, ये 42 नंबर हो गया क्योंकि ऐसा स्वभाव है और स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नहीं होता आपके क्यों ऐसा नहीं प्रश्न पूछना ऐसा स्वभाव है। 108, निरय गई अनंत गुणहीना, उससे नरक गति अनंत गुणहीन है क्योंकि वह नारक पर्याय को उत्पन्न कराने वाली है। तिरिक्ख गई अनंत गुणहीना, उससे तिरियक गति अनंत गुणहीन है क्योंकि उसमें नरक गति के समान 33 सागरोपम काल तक फल उत्पन्न कराने की शक्ति नहीं है, अथवा वह नरक गति के समान दुख की कारण नहीं है। ये 3 इंच गति की बात है। उसके बाद कहते हैं इत्थी वेदो अनंत गुणहीनो, उससे स्त्री वेद अनंत गुणहीन है क्योंकि वह अरति गर्भित कंडे की आंख के समान दुखोत्पादक है। कंडा है ने वो छाना बता बोलते ना, क्या कहते आप, गौरी कहते मराठी में, गोबर का बनाते ना, गोबर तो गोबर में से जो बनाते हैं सुखा के, हाँ वो जलाते हैं, हाँ जो कुछ है वो, उसको कंडे की अग्नि का उपमा दी है। देखो ये जो पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद है, उनमें जो जीवों के भाव उत्पन्न होते हैं उसकी अपेक्षा उसको दृष्टांत देके समझाए। सर्वथा ऐसा नहीं समझना, हर जीव में उसकी हिनादिकता होगी, परंतु ये उत्कृष्ट की बात चल रही ना, तो पुरुष के जो है, पुरुष वेद जो है उसको तृणाग्नि, तृण की अग्नि, जैसे सूखा हुआ तृण, भभक उठता है बिल्कुल, तृण क्या है, वो तो जल जाता है ना, मिट जाता है। फिर कंडे की अग्नि ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है, और फिर ईंट की वो तो गर्म ही बहुत काल तक गर्म रहती है। ये उदाहरण देके, दृष्टांत देके समझाया है। तो उसमें अनुभाग की अपेक्षा समझना, स्त्री वेद का अनुभाग ज्यादा है और पुरुष वेद का कम है। देखो, क्योंकि उस वह अरति गर्भित कंडे की आंख के समान दुखोत्पादक है। कहां पर? नहीं, वह अरति गर्भित है, इतना ही है। कंडे की आग, ये तो दृष्टांत हुआ। चालीस, पुरुष वेदो अनंत गुणहीनो, 111 नंबर का सूत्र पढ़ा, उससे पुरुष वेद अनंत गुणाहीन है, क्योंकि वह तृणाग्नि के समान थोड़े दुख को उत्पन्न करने वाला है। ये दुख को उत्पन्न करने वाले ही है सब भाव, सभी जो मोहिनी के उदय में जो मिथ्यात्व और कषाय भाव है, वो सारे ही दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। तो हास्य अच्छा के शोक अच्छा, दोनों ही दुख को उत्पन्न करने वाले। रदि अनंत गुणहीना, उससे रति अनंत गुणहीन है, क्योंकि वह माया, लोभ और तीन वेद पूर्वक होती है। देखो, हमने राग और द्वेष के दो डिवीजन, कषायों को हम दो में विभाजित करेंगे। चार में करते तो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं। उसमें राग और द्वेष ऐसे दो डिवीजन करेंगे, दो भेद करेंगे। तो राग में कौन कौन आता है? माया और लोभ राग रूप है, और क्रोध और मान वो द्वेष रूप है। अब नौ कषाय जो है, नौ, उसमें डिवीजन करनी है, तो कैसे करेंगे? तीन वेद कहाँ जाएंगे? राग में चले जाएंगे, हाँ, और हास्यरति भी राग में चले जाएंगे, बराबर, और शोकरति भयजुगुप्सा वे द्वेष में। तो ये रति जो है वो माया, लोभ और तीन वेद पूर्वक होती है। अब 48 नंबर पर ऊपर पहले पढ़ेंगे, 113। हस्यम अनंत गुणहीनम, उससे हास्य अनंत गुणाहीन है, क्योंकि वह रति पूर्वक होता है। 114। देवाउम अनंत गुणहीनम, उससे देवायु अनंत गुणहीन है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। देव गति को कहां पर लिया था? तीसरे स्थान पर लिया, उच्च गोत्र और यश कीर्ति के बाद उस देव गति लिया था वहां, यहां देव आयु लिया। हाँ, प्रशस्त है, परंतु वो तो उसमें अनुभाग कम है ना, अभी यहां पर अनुभाग की अपेक्षा ले लिया, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। उससे नारकायु अनंत गुणहीन है, उसमें अनुभाग की अपेक्षा लेना है खाली। कारण कि वह देवायु की अपेक्षा अप्रशस्त है। मनुष्याउम अनंत गुणहीनम, उससे मनुष्यायु अनंत गुणहीन है, कारण कि नारकायु के समान मनुष्यायु का बहुत समय तक उदय नहीं पाया जाता। शंका, चूंकि नारकायु की अपेक्षा मनुष्यायु प्रशस्त है, अतः वह उससे अनंत गुणी क्यों नहीं होती? ये आपका प्रश्न उसमें भी था ना, देवायु में नहीं, क्योंकि यहां प्रशस्तता से उत्पन्न अनुभाग की अपेक्षा बहुत समय तक रहने वाले उदय निमित्तक अनुभाग की प्रधानता है। आयु में क्या होता है, कितने समय तक रहेगी, यही उसका अनुभाग है ना अधिक। उससे तिर्यक आयु अनंत गुणहीन है, कारण कि मनुष्यायु की अपेक्षा, अब यहां प्रशस्त की बात लगाई, तिर्यक आयु के अप्रशस्तता देखी जाती है। नंबर लगाए कि यहाँ कितने आ गए, 52 आ गए हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग की बात की उन्होंने सब जगह। 64 पद वाला महादंडक समाप्त हुआ। ये 64 पद में उन्होंने तो अलग अलग रिपीटर हो गए 12 बार। यानी उन्होंने नंबरिंग जो किया है, जहां जहां तीन प्रकृति उनको तीनों नंबर दिए इस तरह से। अब इस अल्प बहुत्व से सूचित होने वाला उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विषयक स्वस्थान करना, स्वस्थान हुआ है ना, स्वस्थान अल्प बहुत्व कहते हैं। स्वस्थान किसको कहेंगे? हाँ देखो, अभी तो ये सभी टोटल प्रकृतियों को एक साथ बताया है, आठों ही कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को ले लिया था। अब यहाँ कहते हैं कि अपनी अपनी जो है ज्ञानावरण की जो पांच है उसमें अल्प बहुत्व बताएंगे, उसको कहते हैं स्वस्थान। अपने अपने में दर्शनावरण की नौ है उसके अपने अपने में लगाएंगे, तो यह है स्वस्थान अल्प बहुत्व। अच्छा, उच्च और नीच में क्या यह था, अभी हम पढ़ेंगे इसको। केवल ज्ञानावरण सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय अनंत गुणी हीन है, उससे श्रुत ज्ञानावरणीय अनंत गुणी हीन है, उससे अवधि ज्ञानावरणीय अनंत गुणी हीन है, और उससे मनपर्य ज्ञानावरणीय अनंत गुणी हीन है। ये उसका अनुभाग अपेक्षा नंबरिंग है। अब केवल दर्शनावरण में लगाएंगे, दर्शनावरणी कर्मों में। केवल दर्शनावरणीय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणी हीन है, उससे अचक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणी हीन है, उससे अवधि दर्शनावरणीय अनंत गुणी हीन है, उससे स्त्यान ग्रुद्ध है। नंबर देना है तो ये पांचवा आया। अनंत गुणी हीन है, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणी हीन है, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणी हीन है, उससे निद्रा अनंत गुणीहीन है, और उससे प्रचला अनंत गुणीहीन है। ये नौ इसके हो गए। वेदनीय में साता वेदनीय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे असाता वेदनीय अनंत गुणीहीन है। अब मोहनीय में लगाएंगे। मिथ्या तो प्रकृति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे अनंतानुबंधी लोभ अनंत गुणाहीन है। अभी माया क्रोध और मान को विशेषहीन कहेंगे, उससे अनंतानुबंधी माया विशेषहीन है, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेषहीन है, उससे अनंतानुबंधी मान विशेषहीन है। अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन का नंबर है, उससे संज्वलन लोभ अनंत गुणाहीन है, उससे संज्वलन माया विशेषहीन है, उससे संज्वलन क्रोध विशेषहीन है, और उससे संज्वलन मान विशेषहीन है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, यानी उसमें भी 10, 11, 12 और 13, उसमें भी पहले लोभ, फिर माया, फिर क्रोध और मान, और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क में भी 14, 15, 16, 17 कहना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण मान से नपुसक वेद अनंत गुणाहीन है, उससे अरति अनंत गुणीहीन है, अभी जो हमने पढ़ा था वो, उससे शोक अनंत गुणाहीन है, अभी सुए, उससे भय अनंत गुणाहीन है, उससे जुगुप्सा अनंत गुणीहीन है, उससे स्त्रीवेद अनंत गुणाहीन है, उससे पुरुष वेद अनंत गुणाहीन है, उससे रति अनंत गुणहीन है, उससे हास्य अनंत गुणाहीन है। छब्बीस हुए ना, मिथ्यात्व और 25 कषाय लिए। कौन से लिया ना आपके? 26 नहीं आए, 25 आए। मिथ्यात्व को एक नंबर दिया था ना, प्रत्यक्ष अनावरण को कितने नंबर दिए आपने? हाँ, और बाद में 17, नपुंसक वेद को 18, अरति को 19। एक हाँ, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति को नहीं लिया ना यहाँ पर। हाँ, अभी आगे आयु कर्म में ले। अभी इसका नंबरिंग फिर होगा। देवायु सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे नारकायु अनंत गुणीहीन है, उससे मनुष्यायु अनंत गुणीहीन है, और उससे तिर्यकायु अनंत गुणीहीन है। कौन से? ये आयु की बात चल रही। आयु में उन्होंने बताया था ना, वो तो लंबी आयु की अपेक्षा वहां लिया था, फिर मनुष्य तिरेंचो में प्रशस्त अप्रशस्त की अपेक्षा लगाए। ऐसा कोई कारण नहीं है, उसका अनुभाग कितना हो सकता है मैक्सिमम उसकी बात है, अधिक से अधिक अनुभाग की अपेक्षा बात है। अब गतियों में लगाएंगे। देव गति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, ये नाम कर्म में गति जाति ये सब लगाएंगे अभी। हाँ, 42 में भी लगाएंगे। हमने कल नाम गिनाए थे ना, पिंड प्रकृति 14 है, बाकी सिंगल सिंगल होती है। तो ये गति, चार गति में देव गति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे मनुष्य गति अनंत गुणीहीन है, उससे नरक गति अनंत गुणीहीन है, और उससे तिर्यक गति अनंत गुणीहीन है। हाँ, क्रम बदला। अब जाति में, जाति किसको कहते हैं? मम्मी याद है, खबर है, पता है? एकेंद्रीय द्वेंद्रीय जाति कहलाती है। हाँ, तो पंचेंद्रीय जाति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। इसमें प्रशस्त कौन कौन सी है जातियाँ? पंचेंद्रीय जाति प्रशस्त है, एकेंद्रीय द्वेंद्रीय तीनद्रीय चतुरेंद्रीय अप्रशस्त है, पाप प्रकृतियां हैं वह। अब यहाँ प्रशस्त है या अप्रशस्त है, अपने अपने कोई भी हो, अनुभाग किसका ज्यादा है इतनी बात है। यहाँ प्रशस्त अप्रशस्त का डिफरेंस नहीं है। तो पहले पॉइंट पर पंचेंद्रिय जाति सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, दूसरे पर उससे एकेंद्रीय जाति अनंत गुणीहीन है, उससे द्विंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है, उससे त्रिंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है, उससे चतुरिंद्रिय जाति अनंत गुणीहीन है। गति जाति, अभी शरीर, पांच प्रकार के शरीर ना, कार्मण शरीर वगैरह। तो पहले पॉइंट पर कार्मण शरीर सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। हमने भी वो देवगति की बात कम देखा था, वो उसमें नंबर आया था उसका जल्दी। उससे तेजस शरीर अनंत गुणाहीन है, उससे आहारक शरीर अनंत गुणाहीन है। आहारक शरीर का अर्थ क्या है? हाँ, छठे गुणस्थान है। हाँ, आप क्या कहते हैं? यहाँ नाम कर्म की बात चल रही है। लिखा तो है कार्मान शरीर, कार्मान शरीर नाम कर्म का अनुभाग सबसे तीव्र है, ऐसा समझना। ये औदारिक शरीर की या आहारक शरीर की, वैकरिक शरीर की बात नहीं है। उस नाम का जो नाम कर्म है ना, उस कर्मों की बात चल रही है, शरीरों की नहीं। कर्म का भी नाम वही है। हाँ, 93 प्रकृति याद करना, ऐसा कहते हैं। अभी हमने देखते हैं, चार प्रकार के गति नाम कर्म है, पांच जाति नाम कर्म है, पांच शरीर नाम कर्म है। ये शरीर जो है वो तो अलग, ये औदारिक शरीर नाम कर्म की कौन सी वर्गणा से बना है? आहार वर्गणा। हाँ, कर्मण वर्गणा, बहुत अच्छा। अभी हमने क्या कहा? औदारिक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गणा से बना है? कर्म कौन सी वर्गणा से बनता है? कर्मण वर्गणा से। हाँ, सब ख्याल है ना। औदारिक शरीर काहे से औदारिक शरीर काहे से बना है? तो आहार वर्गणा कहो। अभी अभी पांचों ही शरीर नाम कर्म है। कर्मण शरीर नाम कर्म, तेज शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर, आहार शरीर, वैक्रिक शरीर नाम कर्म हो। वे काहे से बने हैं? कर्मण वर्गणा से बने। अभी ख्याल में आए? ये सबके नाम समान है तो उसके ऊपर नहीं जाना होती है ना, उसमें क्या है मैं प्रश्न इसीलिए उल्टे पुल्टे पूछती हूँ देखो, आहार शरीर अनंत गुना ही नहीं, ये लिखा तो क्योंकि अभी ये शॉर्ट में लिखना है ना उनको, बार बार हर एक का पूरा नाम नहीं लेंगे। चौथे पॉइंट पर, उससे वैकृत शरीर अनंत गुनाहीन है और उससे औदारिक शरीर अनंत गुनाहीन है। अब संस्थानों की बारी है। छह प्रकार के संस्थान है, मालूम है ना? हाँ, समचतुरस्र आदि। तो समचतुरस्र संस्थान सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। उसमें भी वो समचतुरस्र वो एक ही प्रशस्त है, बाकी पांच अप्रशस्त है। उससे हुंडक संस्थान अनंत गुणाहीन है। अरे, इसका दूसरा नंबर आया। उससे वामन संस्थान अनंत गुणाहीन है, उससे कुब्जक संस्थान अनंत गुणाहीन है और उससे स्वाति संस्थान अनंत गुणाहीन है, उससे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान अनंत गुणाहीन है। हाँ, वो दंडक में अलग अलग इनका नाम नहीं लिया था, उसमें तो गति लिया था या शरीरों की बात की थी। क्या कहते हैं, आपका प्रश्न क्या है? अभी इसमें ऐसा कोई हम रूल नहीं, वो तो हुंडक हम सबसे बेकार हो ऐसा समझते हैं कि जो पहले गुणस्थान में बंद विच्छित्ति होती है, वो कहीं भी कुछ भी हो, वो तो यहाँ तो अनुभाग के लिए ऐसा कोई ये उत्कृष्ट अनुभाग कितना हो सकता है उसकी अपेक्षा से नंबर दिए है। यानी समचतुरस्र संस्थान में उत्कृष्ट अनुभाग सबसे ज्यादा है, हुंडक संस्थान का उत्कृष्ट अनुभाग उससे कम है, अनंत गुणाहीन है, इस तरह लेना उसको। अब अंगोपांगों की बात है। पहले हमने शरीर देखे थे, कर्मों की ही बात चल रही है। हाँ, अब अंगोपांग, अंग और उपांग, नाम कर्म की बात चल रही है। ये अंगोपांग नाम कर्म का उदय किस किस के होता है मालूम है? हाँ, चारों गतियों वालों को। किसको नहीं होता? हाँ, एकेंद्रियों को नहीं होता। उनका अंग तो है, उसके हाथ पैर नहीं होते ना। दो इंद्रियों के आगे जो दो इंद्रियों से जो आगे जीव है, उनके अलग अलग अवयवों की रचना है ना, स्पेसिफिक अवयव है उसके, तो उसको उपांग। देखो, आहारक शरीर अंगोपांग सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, एक नंबर पर। उससे वैक्रियक शरीर अंगोपांग अनंत गुणाहीन है। देखो, तीनों ही प्रशस्त प्रकृति है, उसमें भी अधिक प्रशस्त आहारक है, फिर वैक्रियक है और फिर औदारिक है। तीसरे नंबर पर औदारिक शरीर अंगोपांग अनंत गुणाहीन है। सहननों के अल्पभूतव की प्ररूपणा संस्थानों के समान है, यानी वो सबसे वो वज्र वृषभ नाराज वाला वो पहले पॉइंट पर आ जाएगा और फिर वो उल्टा क्रम लिया उन्होंने उसमें, बाकी फिर पांच छठा फिर पांचवा इस तरह से लिया है। प्रशस्त वर्ण चतुष्क सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है। वर्ण चतुष्क यानी वर्ण गंध रस स्पर्श, हम उसको स्पर्श रस गंध वर्ण कहते हैं, तो यहां वर्ण चतुष्क कहते हैं उसको। यानी प्रशस्तों में अनुभाग ज्यादा है और उससे अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अनंत गुणाहीन है। दोनों के नाम वही हो गए, शुभ नाम कर्म में हम कहेंगे प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श, और अशुभ नाम कर्म गिनेंगे अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श। अनुपूर्वी की प्ररूपणा गति नाम कर्म के समान है, याद है क्या? पहले हमने किसको लिया था गतियों में? देवगति को। उसके बाद उसके बाद देव मनुष्य नारक और तिर्यक, गत्यानुपूर्वी को भी उसी क्रम से रखना है। अगुरु लघु सबसे तीव्र अनुभाग वाला है, इससे उच्छ्वास अनंत गुणाहीन है। ये हम चार एक साथ कहते हैं ना, अगुरु लघु उच्च परघात उच्छ्वास और उपघात, उससे परघात अनंत गुणाहीन है और उससे उपघात अनंत गुणाहीन है। सब युगलों में, सब युगल कितने युगल है याद है? 10 युगल है ना, चार तो वो त्रस स्थावर, फिर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, ये सब में प्रशस्त वाले जो है, पहला नाम जिसका जिसका लिया, त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक, ये प्रशस्त है, और स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण ये अप्रशस्त है। तो कहते हैं सब युगलों में प्रशस्त प्रकृतियों का, ये यो बराबर करना, अनुभाग तीव्र है। अन्य भी युगल है वहाँ, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यशकीर्ति, ये यशकीर्ति तो अलग गिनाया था, बाकी ये युगल। उससे अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणाहीन है। आगे अच्छा, वो युगल पहले लिए, त्रस स्थावर आदि सब युगलों में प्रशस्त प्रकृतियां सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त हैं, उनकी प्रतिपक्षभूत अप्रशस्त प्रकृतियां अनंत गुणीहीन है। ये नाम कर्म यहाँ समाप्त हुआ। उच्च गोत्र सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उससे नीच गोत्र अनंत गुणाहीन है। वीर्यांतराय सबसे तीव्र अनुभाग से युक्त है, उसके नीचे क्रमशः दानांतरायादिक अनंत गुणहीन है, यानी दान लाभ भोग उपभोग, इसको इस तरह से लेना। इस प्रकार स्वस्थान अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अब आगे हमने तीन गाथाएं देखी थी, अब ये चौथी गाथा। ये उत्तरोत्तर अनंत गुणी बताएंगे अभी, पहले अनंत गुणी हीन वाली बताई थी ना, उल्टा उल्टा अभी। अब हम पढ़ेंगे इसको, देखो ये गाथा पहले पढ़ते हैं। संजमण दान मोही लाभम सुदचक्षु भोग चक्षुम च आभिनिवोह्य परिभो वीरियणवणो कसायाया। इसका अर्थ देखते हैं, संज्वलन चतुष्क मनपर्य ज्ञानावरण दानांतराय अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण लाभांतराय श्रुत ज्ञानावरण अचक्षु दर्शनावरण भोगांतराय चक्षु दर्शनावरण आविनिबोधि ज्ञानावरण परिभोगांतराय वीर्यांतराय और नौ नौकशाय, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हैं। पहले उत्तरोत्तर अनंत गुणी हीन की बात की थी। संज ऐसा कहने पर चारों ही संज्वलन कषायों का ग्रहण करना चाहिए। मन दानम यह कहने पर मन पर्य ज्ञानावरणीय और दानांतराय का ग्रहण करना चाहिए। ओही ऐसा कहने पर अवधि ज्ञानावरणीय का ग्रहण करना चाहिए। लाभ पद का निर्देश, निर्देश यानी कथन, लाभांतराय का ग्रहण करने के लिए किया है। श्रुत ज्ञानावरणीय का ज्ञान कराने के लिए सुद पद का निर्देश किया है। अचक्षु दर्शनावरणीय का ग्रहण करने के निमित्त अचक्षु पद का निर्देश किया है। भोग पद का निर्देश भोगांतराय का प्रारूपक है। चक्षुमच यह निर्देश चक्षु दर्शनावरणी का ग्रहण करने के निमित्त है। जगन ने पे लिए थे। हाँ अभी जगन ने संबंधी अल्प बहुत्व होगा ये सब। पेज 75 अरे 75 पेज ही नहीं मेरे में। 75, 77, 78 चार पेजेस नहीं है। बाद में वो निकालना है। एक सौ अठारहवें सूत्र में आगे 64 पद वाला जघन्य महादंडक करने योग्य है। पूर्वोक्त तो जघन्य अल्प बहुत्व, ये अभी जघन्य अल्प बहुत्व बता रहे। पहले हमने क्या देखा था, हरेक प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा नंबरिंग किया था और हरेक का अपना अपना जघन्य अनुभाग अभी ले लेंगे। सबसे जघन्य में जघन्य किसको लेना? हाँ संज्वलन को। वो भी क्यों? कृष्टि होती है ना, तो अगर हम सोचेंगे तो संज्वलन लोभ को ले सकते पहले स्थान पर। सूक्ष्म कृष्टि होती है और वो तो दसवें के अंत समय में उसका जो अनुभाग जो है मिनिमम पॉसिबल है। अन्य कर्मों में वो पूर्व स्पर्धक में से अपूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक में से बादर कृष्टि, बादर में से सूक्ष्म कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि का भी अनुसमय अपवर्तन जो होता है, हर समय अनंत भाग होता है, तो उसके कारण इसमें तो जघन्य अनुभाग की अपेक्षा उसका पहला नंबर लिया। तो यहां से जो है ना वो जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अल्प से अधिकतर वहां तक ये नंबरिंग चलेगा अभी जो हम पढ़ेंगे वो। या उन्होंने लिखा नहीं है परंतु ये जघन्य अनुभाग की अपेक्षा लेना। एक्चुअली वहां हमने अल्प बहुत्व कहा परंतु उसको हम भागा भाग कह सकते थे। पहले जो उत्कृष्ट में तो हमने भागा भाग देखा, पहला भाग दिया फिर उसका अनंतवा भाग देखा। अब यहाँ अल्प से शुरू करके उत्कृष्ट तक जाएंगे जघन्यों में। ये अभी हमने यहाँ तक आए थे, देखो शंका अभी पढ़ेंगे। चक्खुम च यहाँ च शब्द का उच्चारण किस लिए किया है? जिस प्रकार श्रुत ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय ये तीन प्रकृतियां अनुभाग की अपेक्षा परस्पर समान है, उस प्रकार चक्षु दर्शनावरणीय समान नहीं है यह जतलाने के लिए च शब्द का निर्देश किया है। यानी वो तीन तो एक साथ लिए। ये गाथा देखना, देखो यह लिखा है लाभम सुद चक्षु, सुद अचक्षु, वो अचक्षु समझना क्योंकि प्राकृत भाषा में अ का लोप हो जाता है। तो श्रुत और अचक्षु और भोग ये तीनों को एक साथ लिया। और चक्षुंच वो च शब्द उसका अर्थ पहले होता है और चक्षु, यानी वो तीन का ग्रुप अलग है और ये चक्षु दर्शनावरणी अकेला अलग है, ये बताने के लिए च शब्द डाला है। आभिनिबोह्य पद के निर्देश से नीचे के लाइन में, अभी गाथा की सेकंड लाइन में, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय का ग्रहण करना चाहिए। परिभोग इस वचन से परिभोगांतराय का ग्रहण करना चाहिए। नवच यहां किए गए च शब्द के निर्देश से इन प्रकृतियों से अव्यवहित प्रकृतियों का अनुभाग सदृश है यह सूचना की गई है। हमने पहले भी देखा था ना, आभिनिबोधिक, परिभोग, वीर्य ये सब समान थे। पहले हमने उत्कृष्ट में भी देखा था उसको समान वालों में। वीर्य कहने पर वीर्यांतराय का ग्रहण किया गया है। नव नो कषाया ऐसा कहने पर नव नो कषायों का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ सर्वत्र अनंत गुण शब्द का अध्याहार करना चाहिए। अध्याहार ने उसकी कंटिन्यूटी समझना चाहिए, टेक इट फॉर ग्रांटेड। अव्यवतन उसको छेद बिना, उसके लिए वो प्रकृतियों का अनुभव समान है, तुल्य है। नव च यहाँ किए गए च शब्द के निर्देश है, नवच चक्षुम च है, एक मिनट है, यहाँ प्राकृत में क्या लिखा है, नवच लिखा है कि नव लिखा है, देखो निर्देश भोग निर्देशो भोगंतरा ये सब परिवर्तन, चक्षुम चेदी वो हो गया, किमटम चुना नवर्णी वो तो हो गया, आभिनिवोह्य निर्देशेन आभिनिवोह्य नानावर्ण्यं गेत्तव्यं परिभोगवयनेन परिभोगान्तरायं गेत्तव्यं नम वच नवच नहीं नहीं मैं इसमें ढूंढ रही हूँ, नीचे से चौथी लाइन नम वच इदि च शब्देन च शब्देन एदासी अनंतरायो पड़ीयणम अनुभागो सरिसोत्ति सूचिदो अनंतरादो अव्यवहित, ये कहा ना वहाँ अव्यवहित ने अनंतर अनंतर प्रकृतियों का अनुभाग समान होता है, अनंतर यानी दो दो लिखे ना अभिनिबोधिक और परिभोग, इन दोनों का समान होता है। वो च शब्द कुठे कहाँ पर पीछे नो कसायाया चार नंबर का, हाँ गाथा सूची है ना पीछे, वहां देखना नव नो कसायायम, वो च शब्द उन्होंने दोनों जगह लिया होगा शायद, नव च अभी हम अपने पेज पर आते हैं, नवन हो कसा ऐसा कहने में वो पढ़ा था हमने, अनंत गुण जो है वो शब्द हर एक जगह लगाना चाहिए, एक बार बताया उन्होंने, अनंत गुण कहां पर आया, उत्तरोत्तर अनंत गुणी है। आगे आगे आ गई है अनंतगुणी, अनंतगुणी शब्द आया कहाँ, अध्याहारों का ये वो अनंतगुण शब्द का अध्याहार करना चाहिए, ये अध्याहार कहाँ से लिया उन्होंने बता दिया उन्होंने टीका में बस, चौथे के नीचे कहाँ आया वो हिंदी में लिखा, ये उन्होंने बता दिया है सूत्र के एक्सप्लेनेशन में कि अनंत गुणा ये सर्वत्र समझ लेना है, ये बात है क्योंकि सभी गाथाएं होने के बाद वो शायद बताएंगे अनंत गुणा है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे, ये गाथा पढ़ेंगे अभी हम, पांच नंबर की गाथा के पणि अठत्तीयण मिच्छा ओवे तिरिक मनुषाओ ते आकम शरीरम तिरिक निरय मणुव देव गई। इसका अर्थ देखते हैं, केवल ज्ञानावरण ये सबके जघन्य अनुभाग की बात चल रही है। उत्तर उत्तर अभी अनंत गुणी हम देख रहे हैं, वहां हम कहाँ तक आए थे, नौ नौ कषाय तक आए थे। केवल ज्ञानावरण व केवल दर्शनावरण, प्रचला, निद्रा, आठ कषाय, स्त्यान वृद्धि आदि तीन, अनंत अनुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, औदारिक शरीर, वैकिरेक शरीर, तिर्यक आयु, मनुष्यायु, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, तिर्य गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी है। केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी का ग्रहण करने के लिए खे ऐसा निर्देश किया है। वे दोनों ही प्रकृतियां सदृश है यह जतलाने के लिए के इस एक ही शब्द के द्वारा उन दोनों का निर्देश किया गया है। प ऐसा कहने पर प्रचला का ग्रहण, हाँ, प्रचला का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नाम के एक देश से भी नाम वाले का बोध होता हुआ देखा जाता है। कल हमने देखा था ना, हाँ, मराठी में कहते ना तासे ताक भात, हाँ, वैसे नीस निर्देश से निद्रा का ग्रहण करना चाहिए, कारण पहले के समान कहना चाहिए। अर्थ ऐसा कहने पर प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन आठ कषायों का ग्रहण करना चाहिए। तीय कहने पर स्त्यान वृद्धि त्रय का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आचार्यों का उपदेश है। अन यह निर्देश अनंतानुबंधी चतुष्क का ग्रहण करने के निमित्त है। मिच्छा शब्द का निर्देश मिथ्यात्व का ग्राहक है। ओ कहने पर औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। ये तो जिसको कहते हैं ना, वो तो एक 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 अक्षर लेके गाथा ऐसी बनाई कि वो क्रम याद में रहे। शंका, ओ कहने पर अवधि ज्ञानावरण का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि उसका पहले कथन कर आए हैं। वे ऐसा कहने पर वैकिरिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए, अन्य का नहीं, क्योंकि उससे अन्य का ग्रहण करना संभव ही नहीं है। तिरिक्ख मनुषा वो ऐसा कहने पर तिर्यक आयु और मनुष्य आयु इन दो आयुओं का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आयु शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है। तेया कम्म शरीरम ऐसा कहने पर तेजस और कार्मण शरीर का ग्रहण करना चाहिए। तिरिक्ख निरय मनुव देव गई ऐसा कहने पर चारों गतियों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गति शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ है। हर एक के साथ उसका वो समझ लेना उसमें। निजागोदम अजसो असाद मुच्चम तसो तहा जादम निरयाउ देवाउ आहार शरीर नामम च। निज गोत्र अयश कीर्ति असाता वेदनीय, उच्च गोत्र यश कीर्ति तथा साता वेदनीय नारकायु देवायु और आहार शरीर, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणी हैं। यह गाथा सुगम है। अब यहां भी 64 पदों वाला महादंडक कहेंगे, वो कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।